दर्शील की फिल्म बम्बम भोले 2010 में आई थी। इस फिल्म का जो नाम है वो नाम तारे ज़मीन पर फिल्म के एक गाने से लिया गया था, और इसकी कहानी एक ईरानी फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन से उठाई गई थी। इस तरह से प्रियदर्शन की बनाई हुई और दर्शील अभिनीत फिल्म बम्बम भोले सन 2010 में जब आई तो इसकी कहानी में कोई फेरबदल नहीं था, सिर्फ इसके किरदार बदल दिए गए थे। यहाँ हिंदी वाले में खोगीराम ग्वाला और रितु ग्वाला का परिवार है, जिसके बच्चे पीनू और रिमझिम है। परिवार गरीब है, बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म जुटाने तक के लिए इनके पास पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, और ऐसी हालत में कोर्ट में खाज वाला मामला तब पेश आता है जब पीनू अपनी बहन का इकलौता जूता खो देता है। अब दोनों भाई बहन मिलकर माँ बाप से जूता खोना छुपाने में जुट जाते हैं। उन्हें नए जूते जुटाने की भी कोई योजना बनानी थी। एक ही जोड़े जूते थे तो दोनों भाई बहन उसे बदल बदल कर पहनते और स्कूल जाते। कई बार जूते न पहनने के कारण पीनू को दिक्कतें आती रहती हैं। ईरानी फिल्म जैसा ही इसमें भी खोगीराम बागवानी का ही काम करता है, और जब वो काम ढूंढने निकलता है तो पीनू भी उसके साथ जाता है। कई हवेलियों में काम ढूंढने के बाद एक जगह जहां उन्हें काम मिलता है वहां एक 6 साल की बच्ची पीनू के साथ खेल रही होती है। इसी खेलने कूदने के क्रम में पीनू को पता चलता है कि एक मैराथन दौड़ है जिसमें तीसरे इनाम में जूते हैं। पहले इनाम में हाई स्कूल तक की मुफ्त पढ़ाई और ऐसी चीज़ें थी, लेकिन पीनू का ध्यान तो जूतों पर था। पीनू इस दौड़ में भाग लेता है, इसके लिए तैयारी करता है, पूरी मेहनत से दौड़ता है, और पूरी मेहनत से दौड़ता पीनू तीसरे के बदले पहले नंबर पर आ जाता है। भरी हुई आंखों से वो पहला इनाम लेता है और तीसरे इनाम में जूते किसी और को मिलते देखता रह जाता है। हिंदी फिल्म है तो कहानी में रिमझिम को जूते नहीं मिलेंगे, ऐसा बताने पर तो बात खत्म नहीं होगी। आखिरी दृश्य में उनके पिता की साइकिल दिखाते हैं जिस पर लाल जूते टंगे होते हैं रिमझिम के लिए, और पीनू के फट गए जूतों के बदले नए बास्केटबॉल शू टंगे दिखते हैं। ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि भगवद गीता बार बार पढ़ने की चीज़ होती है। हमें भी इस कहानी के पीछे धोखे से भगवद गीता पढ़ानी थी। बार बार भगवद गीता पढ़ने वाले कई लोग एक मामूली सा अंतर बताने की कोशिश नहीं करते। वो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला श्लोक तो बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हर बार कर्मों का फल ही त्यागना है तो ज्ञान योग अलग क्यों हो जाता है, भक्ति योग में क्या अलग होगा। भगवद गीता कहती है कि आप कर्म करने से बच नहीं सकते, मन वचन कर्म से कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे होंगे, कर्म होगा तो कर्म के फल भी होंगे। जब ज्ञान योग की बात करते हैं तो आप एक ऐसी ऊंची अवस्था की बात कर रहे होते हैं जहां पर आप ये समझते हैं कि कर्म होंगे, कर्म के फल भी होंगे, मगर आप उन कर्मों में आसक्ति त्याग चुके हैं। अच्छे बुरे दोनों फलों की आप स्थिति में बिल्कुल समभाव में होते हैं। एक जैसा ही असर हो, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है। फलों के अच्छे होने पर खुश होना या बुरे होने पर थोड़ा सा नाराज़ हो जाना बिल्कुल आम बात है। तो ऐसे लोगों के लिए इससे थोड़ा सा आसान भक्ति योग होता है। भक्ति योग में अच्छा बुरा जैसा भी फल आए वो भगवान को ही समर्पित होता है। अच्छा होने पर खुश नहीं होना, बुरे से दुखी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म का फल पहले ही भगवान को समर्पित है, इसलिए उस कर्म का पाप या पुण्य भक्त को नहीं भोगना। कुछ कुछ वैसा जैसा फिल्म का बच्चा जूते तो ढूंढ रहा है लेकिन वो तो पहले ही उसकी बहन को समर्पित है, इसलिए जब वो जूतों के चक्कर में माँ बाप से या स्कूल में झूठ बोल रहा होता है तो आप उस पर नाराज़ नहीं हो सकते। इसे हाल की राजनीति में जोड़ करके देखना है तो बैंगलोर में एक नक्सल समर्थित तथाकथित पत्रकार महिला के मारे जाने को जोड़ कर देखिए। क्या आपको याद है कि किसी ने उसके मारे जाने पर खुशियाँ मनाई थी? ये खुशियाँ मनाने वाला किस संगठन से जुड़ा हुआ था, किस जगह का था, दिखता कैसा था? कुछ भी याद आता है क्या? कुछ भी नहीं याद आया हो तो कोई बात नहीं। अब आप ये याद कीजिए कि उसे किसका भक्त बताया गया था। बहुत बढ़िया। तो जैसे इस भक्त के कर्म का सारा प्रभाव उसके भगवान पर जाता है, उस पर कर्म फल नहीं आता है, वैसे ही भक्ति योग में भी कर्म भगवान के हो जाते हैं। भक्ति योग भगवद गीता में 12वां अध्याय होता है। 12वां अध्याय 11वें अध्याय यानी विश्वरूप दर्शन के ठीक बाद आता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, विश्वरूप देखने के बाद मन में भक्ति के अलावा कुछ और उपजना मुश्किल ही होगा। यहाँ ये भी याद रखिए कि किसी क्विक फिक्स सॉल्यूशन की तरह भगवद गीता की शुरू में ही विश्वरूप दिखाकर अर्जुन को सवाल बंद नहीं करने के लिए कहा जाता। 11वें अध्याय तक भगवान को इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? पहले ही अध्याय में उसे विश्वरूप दिखा देते और फिर कहते कि चलो अब तो मेरे भक्त के तरफ मेरी आज्ञा का पालन करो। 18 अध्यायों में से 11वें का मतलब होता है करीब 2/3 हिस्सा यहाँ बीत चुका है। फिर भी ये याद रखिए कि बचे हुए 1/3 हिस्से में अर्जुन को सवाल करने से मना नहीं किया गया होता। सवाल आगे के 7 अध्यायों में भी जारी ही है। इसलिए सवालों से जिसकी मुगलिया जज्बात आपा को ठेस पहुंच जाती हो, अगर कोई कुछ और समझाने पर कुछ और समझ ले तो उसकी फिरंगी सेंटिमेंट सिस्टर ब्लास्फेमी चिल्लाने लगती हो, तो उसके लिए महाभारत या गीता जैसी किताबें नहीं होती। गीता महाभारत युद्ध से ठीक पहले सुनाई थी, उसे नाम मिला था श्रीमद् भगवद गीता। बाद में अर्जुन ने कहा कि मैं तो वो गीता भूल गया, क्या आप उसे फिर से दोहरा सकते हैं? अब इस बार गीता वही नहीं रही। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में अगर आप परिस्थितियां बदलते हैं तो नतीजे भी अलग अलग होंगे। बाद में उन्होंने भगवद गीता नहीं सुनाई, बाद में भगवान श्री कृष्ण ने ही अनुगीता सुनाई थी। उद्धव को वो उद्धव गीता सुनाते मिल जाते हैं। सिर्फ महाभारत में ही देखेंगे तो करीब 11 थोड़े बहुत अंतर से मिलने वाले हिस्से गीता कहलाते हैं। इसलिए बार बार गीता पढ़ने का प्रश्न भी गौण हो जाता है, क्योंकि आप बार बार गीता पढ़ते वक्त हर बार अलग गीता पढ़ सकते हैं। बाकी हमने ये जो धोखे से आपको बता डाला वो बिल्कुल नर्सरी के स्तर का है, और PhD के स्तर के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद।